ओम शांति। रोज सवेरे सवेरे बाबा हम बच्चों को क्या करना है, कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष कौन सी धारणा करनी है उस पर अंडरलाइन कराते हैं। आज पहले तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे क्या करते हैं, सब ड्रिल करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वो है जिस्मानी ड्रिल, तुम्हारी है रूहानी ड्रिल। वो शरीर को मजबूत करते हैं, हम सवेरे सवेरे उठकर आशिक बनकर अपने माशूक को याद करके आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई, ये है इंद्र सभा। वो इंद्र तो आज नहीं बरस रहे हैं, लेकिन ये इंद्र जो बाबा है वो रोज ज्ञान की बरसात करते और तुमको परी बनाते। लेकिन बाबा ने कहा इस इंद्र सभा में किसी भी विकारी को नहीं लाना है, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ सभा है। तीसरी बात बताई, कि बच्चों पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, राहु की दशा बैठ जाती है। राहु की दशा से बृहस्पति की दशा बिठाने का सहज साधन कौन सा है? कहते हैं ना, दे दान छूटे ग्रहण। तो दान देते चलो, कौन सा दान? ज्ञान दान, तो ग्रहण चला जाएगा। इसी कड़ी में बाबा ने बताया कि बच्चों की कौन सी बात से बाबा को आश्चर्य होता है, जिससे बाबा कहते कंबख्त देखना हो तो यहां देखो, तो किस बात से कहा होगा? बाबा देखते बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, चलते चलते माया के वश हो जाता है, तो बाबा को आश्चर्य होता है। तो बाबा कहते सदैव सावधानी रखनी है कि माया का धोखा ना लगे। और चौथी बहुत बात रमणीकता से समझाई है कि तुम बच्चों को मोह जीत बनना है, तो मोह जीत बनने का लास्ट लेसन बहुत रमणीकता से मिला है। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 8 जुलाई 2026, आज बुधवार है। मीठे बच्चे, ये भट्टी का लेसन है कि इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है, मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ता है। तो बाबा ने भट्टी का इंस्ट्रक्शन दे दिया। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? कौन सी ड्रिल है जो हम बच्चे कर सकते मनुष्य नहीं कर सकते? कौन सी ड्रिल? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, शरीर की नहीं है, बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। गीता में क्या इशारा है? मन मना भव, मना मन मेरे में लगाओ। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहां क्या कर रहे हैं। माना जो योग कराने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। सभी कर रहे हो ना ड्रिल? सभी अंतर्मुखी होकर के बैठे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है, किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद है। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे। और क्या बन जाएंगे? विकर्मा जीत बन जाएंगे। तो कितनी बड़ी स्टेज हो जाती है इस ड्रिल से, कितना बड़ा स्टेटस हो जाता है। जितना जो याद की यात्रा में अथवा ड्रिल में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, ये है रूहानी। ये जो योगा डे मनाते हैं तो क्या करते हैं? हर जगह, भारत में तो करते ही हैं, विदेशों में भी फिजिकल ड्रिल करते हैं। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानी वाच्य अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच्य है। सिर्फ भगवानी वाच्य नहीं है, भगवान के बच्चों का भी वाच्य है। माना भगवान के बच्चे भी यही कहते हैं। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे हो ना? बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं तो बाबा ड्रिल करा रहे हैं, ड्रिल करते जाओ। बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो, इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। बाबा कहते इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा को बार बार कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है। कितने सालों से बाबा रोज सवेरे सवेरे यही पाठ पक्का कराते हैं। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, सब भट्टी में बैठे हो ना। किसी को लौकिक याद आता है मित्र संबंधी? नहीं आता है ना। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक का एक दो को याद करते हैं, उनों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशुक की, बहुत कम होते हैं। यहाँ तो हम सब माशुक बैठे हैं, माशुक के पास कौन बैठे? आशिक बैठे हैं ना सारे ही। और भक्ति मार्ग में बहुत कम होते हैं, रेयर केस होता है। परंतु माशुक को जानते नहीं है ना, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो। क्या याद करते हो? वो तो शुरू में याद किया, अभी नहीं करेंगे कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। अभी हम ऐसे याद नहीं करेंगे, अभी कैसे याद करेंगे? बाबा आया हुआ है, हमें पढ़ा रहा है और हमें उसकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो अब हम इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है, अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। कौन सा निश्चय होना चाहिए? कौन से निश्चय से यहाँ सभी बैठे हैं कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। इस जन्म के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। लेकिन वो हुआ कहाँ? स्वर्गवासी हुआ ही नहीं तो कितने जन्म की बात ही नहीं। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? सामने लाओ हमको, ये कौन पढ़ा रहा है, कौन निश्चय करा रहा है, कौन करा रहा है? वो है गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, कि निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे पढ़ाएगा। उनको ये विधि पता ही नहीं है कि निराकार आकर के हमको कैसे पढ़ाएगा, वो कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है, पहले दूर था। दोनों अलग अलग मंदिर में रहते थे, अभी शिव और कृष्ण एक ही मंदिर में रहते हैं। कृष्ण के शरीर में लास्ट जन्म में शिव बाबा आकर बैठते हैं, तो दोनों का एक ही मंदिर हो गया ना, तो नजदीक हो गए, पहले दूर रहते थे। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, सवेरे अर्थात सतयुग में, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण की जयंती होती है। ऐसे भी शिवरात्रि आती है फरवरी मार्च में और श्री कृष्ण जयंती अगस्त में। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। अभी देखो बाबा इंद्र सभा में ले आ रहे हैं, सब इंद्र सभा में बैठे हो ना, ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाहर मुखी बाबा किसको कहते हैं, जिसको बाहर के विचार हो, लौकिक संबंधियों के विचार हो, धंधे दोरी के विचार हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, दुनिया में कोई भी अगर एक भी जानता तो बताता। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितने पड़े हैं अभी? बाबा हमको कहता है तुम किनारे पर खड़े हो। देहक का बाप समझाते हैं, हद का बाप का पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, ऐसे भी कईयों को रेस्पेक्ट में बापू कहते हैं ना, कोई एजेड होता है तो भी बापू कहते हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। सबके सामने इमर्ज हो गए ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति, वो एक अर्जुन को बताते हैं। यहाँ सब अर्जुन बैठे हुए हैं, कितने अर्जुन हैं। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, स्थापना तो ब्रह्मा ही करेंगे ना, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझाने अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। बीच में कहते हैं वो चला गया, पारलोक गया, ब्रह्मलोक गया, लेकिन बाबा कहते हैं बीच में कोई नहीं जा सकता। वो बाबा को पता है कि घर में बीच में कोई आया ही नहीं है, इसलिए बाबा अथॉरिटी से कहते हैं जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। वो एक ही आत्मा है जो एक मिनट भी कम नहीं 5000 साल का पूरा रोल करती है। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है तो कब से लेकर 5000 वर्ष है? जब श्री कृष्ण बन के बाहर आया तब से नहीं, गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर 5000 वर्ष 84 जन्मों का पाठ बजाना है। तो उस आत्मा ने टोटल 5000 वर्ष पूरे किए, बाकी तो सतयुग में आएंगे, बाद में आएंगे। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, जैसे शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठे हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। ये आज बाबा ने क्लियर किया है 5000 वर्ष कब से, जब से वो आत्मा गर्भ में प्रवेश हुई तब से 5000 वर्ष। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से कृष्ण बनने के लिए। कृष्ण की आत्मा ज्ञान क्यों ले रही है? फिर से कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इतनी डीप बातें और कोई समझा सकता है? बाबा के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई को भी इन गुह्य रहस्यों का पता नहीं है। अब बाबा के सामने बच्चे आ गए। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, सबको अनुभव है माया बड़ी दुस्तर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहां ग्रहचारी बैठ जाती है? आश्चर्यवत, अभी बाबा का संस्कृत में सुनो, आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बाबा को बच्चों की और बातों पर आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन इस बात पर आश्चर्य जरूर होता है, अफसोस होता है कि इतने अच्छे बच्चे इतने अच्छी पालना लेते हैं, इतना अच्छा ज्ञान लेते हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, ये कमाई करते करते बीच में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तो बाबा अलर्ट कर रहे हैं सावधान रहना। तब कहते हैं जब बाबा देखते हैं अच्छे अच्छे बच्चों पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो। बाबा को आज बता देना कि इस लेवल वाले हमारे में से कोई नहीं है कि बाबा को भी ये कहना पड़े, यहां कोई नहीं है ना, सब भट्टी में और भी परिपक्व होकर के जा रहे हैं माया से बढ़िया बॉक्सिंग करने के लिए, विजयी रतन बनने के लिए। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए, अभी आ रहे हैं ना, जब बाबा ने बताया था कितने साल पहले, अभी तो बाबा के बच्चे बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ ये है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। जब शुरू में बाबा के पास आते थे तो सेंटर्स पर फॉर्म भरवाते थे, कम से कम एक साल धारणा पर जो चले रेगुलर मुरली सुने उसी को यहाँ लाया जाता था, बीच में धारणा टूटी तो भी यहाँ आने का चांस खत्म। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणिया पंडा बन आती है उनको कहेंगे अपने साथ, कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो क्या होगा, दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आने वाला और लाने वाला। किसी विकारी के साथ, विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन परियां भी क्या करेंगी, पीछे पड़ जाते हैं तो कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। कई तो कहते हैं बहन जी हमको ले जाओ तब तो पुरुषार्थ में बल मिलेगा, तब तो हमारी अवस्था और अच्छी हो जाएगी। वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो और तुम नदी भी हो सरोवर भी हो, लेकिन सागर नहीं कहेंगे, नदी और सरोवर कहेंगे। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चित्ता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, सभी यही प्रॉमिस करते हैं ना बाबा के बच्चे। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखाए पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे होंगे। जो देवी देवताओं के भगत हैं, जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। क्यों उनको समझाओ? हो सकता है उसमें से कोई पुराना भगत निकल आए और बाबा का बच्चा बन जाए। बाप कैसे आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। जो अभी संगम पर तीन धर्म स्थापन हो गए, फिर आधा कल्प बाबा निश्चिंत, फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं द्वापर युग से। कहां आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वो सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं, नई दुनिया में उनका धर्म चलता नहीं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि बाबा पवित्रता के बल पर करते हैं, तो एक धर्म में इतनी ताकत हो जाती है जो आधा कल्प चलती है। कोई और में पावर नहीं, बाबा का इतना एक धर्म आधा कल्प चले वो स्थापन करने की और कोई में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। लेकिन ये सब औरों को नहीं बताना है, ये बाबा बच्चों को सीक्रेट बताते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, मुक्ति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम सब क्या हो? नदियां हो, सरोवर हो। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, मास्टर भी नहीं। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वो है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। इस सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे चार भाग में है, चार युग है ना। ये संगम युग है, कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है किसको? मेले को। सब इकट्ठे होते हैं ना, कहते हैं महाकुंभ है, मानो सब एकत्रित होने वाले हैं। भाई इस धर्म का कुंभ है, इस संप्रदाय का कुंभ है, इस कम्युनिटी का कुंभ है। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। हम सब बाबा से आकर मिले हैं, तो यहाँ महाकुंभ है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। कुंभ कह कब कहेंगे, जब सागर से मिलते हैं, बाबा मिलन को कुंभ कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, मतलब ब्रह्मा बाबा में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। ये अंडरलाइन है, जहां ब्रह्मा बाबा का तन है वहां सागर है, और वही कुंभ मेला है और कोई नहीं। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलते हो, नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि तो है ही, बहुत नदियां हैं भारत में तो, अनेकानेक नदियां हैं। दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग, बाबा ने शुरू से ही उसको स्थापित कर दिया है। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो, सब खुशी में हो ना, कोई चिंता है यहाँ बैठे हुए, कोई दुख है किसी को भी नहीं है, क्योंकि सागर के कंठे पर बैठे हैं। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, देहत की बॉक्सिंग है, हरेक के पांच विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, सुबह से संकल्प तो रहता है ना कि आज सारा दिन बाबा को याद करेंगे। बाबा ने जो हर घंटे में पांच स्वरूप का बोला है वो भी सुबह से तो संकल्प रहता है, फिर क्या होता है, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। शुरू में एक ड्रामा भी करते थे, इसमें योगी और माया की बॉक्सिंग होती थी। योगी कहता है मैं ये करूंगा, उसके अगेंस्ट में माया उसके बीच में क्या विघ्न डालेगी वो भी बता देती है। ऐसा एक नाटक बनाया है, बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है, फिल्म जो है वो अभी निकली है। क्यों निकली है, शुरू में तो स्टेज ड्रामा चलते थे ना, नाटक करते थे, मनुष्य खुद ही वो ड्रेस पहन करके ड्रामा करते थे, अभी तो फिल्म है, फिल्म से भी आगे बहुत कुछ निकल चुका है। क्यों निकली फिल्म, बायोस्कोप क्यों निकला, ड्रामा में ऐसा क्यों हुआ, बाबा कहते तुमको समझाने के लिए, ड्रामा में तो एक्टर बदल जाते हैं लेकिन फिल्म में बायोस्कोप में एक बार जो शूटिंग हुई वो बदल नहीं सकती है, तो तुमको भी ये बेहद का ड्रामा समझाने के लिए ये बायोस्कोप निकला है। बाबा कहते हैं ये जो अभी बायोस्कोप निकला है, ड्रामा अनुसार तुमको बायोस्कोप पर ही समझाना था कि ये बना बनाया ड्रामा है। नाटक में तो बदली सदली होती है, ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो नहीं होने वाला है उस पर करो। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। अब लास्ट बाबा का नष्टो मोहा, गीता का लास्ट चैप्टर कौन सा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है ना, तो ये लास्ट गीता का अध्याय सुनो। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें? ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या? इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं। कोई अगर परिवार का सदस्य चला भी गया तो रोएंगे नहीं। इस पर कहानी भी है, सतयुग में मोह की बात नहीं होती। यहाँ तो मनुष्यों को कितना मोह है, किसको रोना न आए तो क्या करते हैं। कईयों की बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी होती है, कोई शरीर छोड़ता है तो भी रोना नहीं आता है। तो यहाँ रोना न आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो सामने वाले को रोना आ जाए, या खुद ही इतना जोर जोर से रोएंगे कि वो परिवार वाले भी रोने लग जाते हैं। आजकल तो ऐसी टीम भी निकली है कई जगह, क्योंकि वो आजकल क्या है, सब मॉडलाइज हो गया है तो रोते नहीं है, तो समझते हैं वो तो रोएंगे नहीं, चलो हम ही जाकर रो लेते हैं। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे, तो समझे कि ये अफसोस करते हैं। रोएंगे तभी होता है कि अफसोस करते हैं, नहीं तो नहीं लगेगा कि इनको गया है उसका अफसोस है। नहीं तो ज्ञानी हो जाए कि अरे देखो परिवार का कोई गया है तो इसको दुखी नहीं है, अफसोस ही नहीं है, क्यों नहीं है तो कहते रो नहीं रहा है। भारत में ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुराने चीज का मान होता है ना। सबसे पुराना कौन है, सबसे पुरानी चीज, सबसे पुराना शिव तो यहां आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वह होकर गया है तो उसकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। यह है ना सच्ची गीता, लास्ट में मोहजीत बना दिया। धारणा के लिए मुख्य सार सब नोट करना, आज का होमवर्क। पहला, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। आज का मेन लेसन है निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। क्या संभाल करनी है? राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। सदा ही ज्ञान दान देने में बिजी रखो अपने आप को, तो माया आएगी ही नहीं। जहां बिजी नहीं है, फ्री होते हैं तो आ जाती है बीच में थोड़ा मिलने के लिए। आज का वरदान बहुत सुंदर है, इसी अंतर्गत है। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। उसका क्लेरिफिकेशन है, जब दूसरों के प्रति जास्ते अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। दूसरों को देखते हैं तो टेंशन होगा ना, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समा कर क्वालिटी वाले संकल्प करो। क्वालिटी वाले तो कम होंगे ना, ज्यादा संकल्प है माना एक टेंशन के संकल्प हैं या व्यर्थ संकल्प हैं। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उसको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। दूसरों की सर्विस की चिंता नहीं, अपनी सर्विस में बिजी रहो। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ये अव्यक्त इशारे। इस महीने का टॉपिक क्या चल रहा है? ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला स्वरूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हरेक सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ये भट्टी का बाबा ने सब्जेक्ट आपको दे दिया। ओम शांति।
ओम शांति। आवश्यक सूचना है, सुन के जाइए। जो भाई बहनें पांडव भवन निवासी और सेवाधारियों के अलावा इस सभा में बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करें। आप सभी को यहां भट्टी में जो आए हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कई नीचे से भी आते हैं, टीचर बहने भी आते हैं, तो आप सभी को पता हो आपके नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि भोजन की व्यवस्था ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में की गई है, वहां ही आप अपना भोजन स्वीकार करेंगे। ये आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि नीचे स्थान बहुत कम है और फिर वहां बहुत दिक्कत हो जाती है। और कल रात्रि को मेडिटेशन हॉल में एक सोने का लॉकेट मिला है, वो जिस किसी का भी हो पांडव भवन के टेलीफोन एक्सचेंज से उस ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और कल आप सभी को आदरणीय भ्राता प्रेम भाई जी का समाचार सुनाया था, हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी, तो आज उनकी अंतिम